अब दुआएं पूरी हो गई। रात की घड़ियों में उठ गया बंदा, सब सो रहे थे, उसकी आंख खुल गई, उसने अपने रब से ये सारी मोहब्बत भरी बातें कर ली। अब जवाब, वो कहते ना कि उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं कलाम आखिर, आता है नालों का जवाब आखिर। ऊपर से जवाब आया, आपकी कॉल आ गई है, आयत 195, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम। क्या उस वक्त दिल की कैफियत होती है जब ये आयतें समझ आ रही हो, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ऊपर से आता है फस्तजाब लहुम, मैंने तुम्हारी दुआ सुन ली है मेरी बंदी, अपना नाम लिखे और कभी इसको इंजॉय तो करके देखें। क्या लज्जत बंदे को नींद में मिलती है, क्या लज्जत किसी को किसी साथी से मिल सकती है जो अल्लाह के किसी के बात के ऊपर कबूलियत के कुन के वक्त असर दुआ मिलती है। कभी एक रात भी ऐसी नसीब हो जाए, आप उस रात को अपनी जिंदगी की खूबसूरत रातों में शामिल कर लेंगे। मिनकुम, रो पड़ेंगे आप आयत सुन के, मैं नहीं जाया करता किसी अमल करने वाले का अमल, मिन ज़करे ना उनसा, चाहे वो मर्द है या औरत, दिन की किसी महरूमी के वक्त आपकी आंखों से आंसू वहां निकल आएंगे कि अल्लाह अच्छा फिर आज जो मैंने छोटी सी कोशिश की लोगों ने तो कदर ही नहीं की, तो फिर आप इसको जाया नहीं करेंगे। कई ऐसे हमारे साथी हैं, दर्श रखा एक सिस्टर थी, पूरा उन्होंने बुकिंग की कराई है वह, तो मुझे आमतौर पे तो पहले इतनी एक्साइटेड होती हैं, लेकिन दर्श से पहले बीच में सासा अभी भी कोई नहीं आया, सासा अभी भी कोई नहीं आया, अभी नहीं कोई आया, लेट होंगे, पता नहीं उस दिन क्या वजह थी या क्या हुआ, आमतौर पे बहुत लोग आते हैं उधर, बाद में आए भी उस दिन उधर नहीं आए जिसे उन्होंने, तो उनका मुझे मैसेज आ गया। वैसे मुझे वो रखती थी साथ के, अच्छा बीच में जब सारे आएंगे तो बात करनी। अब मुझे यहाँ बैठ के समझ आ गया कि ये तो इतना इहतमाम करके बैठी हैं हॉल से जाके, कोई आया ही कोई नहीं है। मैंने फिर उनसे बात की, मैंने कहा कि आप ऐसा करें, आपने जो लेक्चर सुनाना था वो शुरू कर दीजिए। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि वो उस दिन बड़ी उस वक्त डिसहार्ट हुई कि हुआ क्या, और उन्होंने मिठाई ऑर्डर की हुई थी, पता नहीं क्या कुछ हुआ, तो वो नहीं हुई। मैंने फिर उनको मैसेज भेजे, मैं इधर से उनको मैसेज भेज रही थी, फिर मैंने दो चार और भेजे, मैंने कहा देखिए आज आपको पता चलेगा कि आप अल्लाह के लिए करती हैं कि किसी और के लिए। लोग नहीं कदर करते, बाद में वो मिठाई हमसायों को भेज दी, बांट दी, कुछ लोग दो चार आ भी गए बाद में, लेकिन वो जो उन्होंने ओवर एस्टिमेशन किया था वो नहीं हुआ। तो अल्लाह ने रात को उनको जवाब नहीं दे दिया होगा कि अन्नी लाओ दी अमल आमिले मिन को मिन जकरे ना उनसे। बात है, किसी इंसान की खुशी के लिए कुछ करते हैं उसको पसंद ही नहीं आता, अच्छा करते हैं उसको बुरा लगता है, किसी को खुश करते हैं वो नाराज हो जाता है, तो क्या अब हमारे अमल जाया हो गए? नहीं, अन्नी लाउदी अमल आमिल को, यकीन करें ये लव स्टोरी है। मैं ये आयतें पढ़ती हूँ, मुझे ये लव स्टोरी लगती है। क्या किसी मोहब्बत भरे जोड़े की बातें होंगी जो अल्लाह के साथ बातें करके बंदे को मजा आता है। इसके बगैर दिल की दुनिया अंधेरी है, वो सिर्फ एक वक्ती तमा ख्वाहिश मोहब्बत है। असल जो चीज़ है ना वो ये है, इसमें ना उम्र की शर्त है, ना आपका कोई किसी दूसरी दुनिया में जाना ज़रूरी है, ना आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है। ये तो आप मैं आज रात को भी अल्लाह से बातें कर सकते हैं, ये सफ़र की रात भी हो सकती है, ये घर की रात भी हो सकती है। और साथ ही कह दिया बाद को मेम्बा, तुम में से बाज में से हो, अपने आप को ऊंचा ना समझो, आजजी तोड़ा जा रहा है, तुम एक जैसे हो, एक ही बाप के नुतफे से बेटा और बेटी, माँ के रहम में बेटा भी पला बेटी भी बड़ी, यानी औरत मर्द में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। याद रखिए अल्लाह के यहाँ मुकाम में और जन्नत में औरत मर्द की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि औरतें कम दर्जे की जन्नत में जाएंगी मर्द ऊपर, नहीं, ये दुनिया के निज़ाम में 19-20 का जो फ़र्क है उसमें भी औरत को इज्जत ही दी है ज़्यादा, लेकिन वहाँ मैदान खुला है, सब भागी है, जितनी मर्जी जन्नत लें, बीवियाँ पहुँच जाएंगी 100वें दर्जे पर, मर्द हो सकता है 10वें पर बैठे में, अगर पहुँच भी गए जन्नत में। अल्लाह ने नहीं कहना नहीं ये औरत है तो इसको नीचे कर दो, नहीं। और अब आगे देखिए किन की बात है, ये कौन लोग हैं जिनके अमल अल्लाह जाया नहीं करते, फल्लज़ीना हाजरू वअख्रिजू मिन दियारिहिम, वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए अल्लाह के रास्तों में तकलीफें सहने वाले, वऊज़ू फी सबीली, जिन्हें मेरी राह में अजियतें पहुंचाई गई, जिनको लोग बातें सुनाते थे, जिनको तकलीफें देते थे, जो दीन के रास्तों में आना चाहते थे आने नहीं देते थे, पाबंदियां लगाते थे, रास्ते में रोड़े अटकाते थे, वकातलु वकुतिलु, और जिन्होंने मेरी राह में जंग की और जाने भी दी, लाउकफिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, मैं लाजिमन इनकी बुराइयां इनसे दूर करूंगा, हालात भी संवारूंगा, किरदार भी संवारूंगा। देखिए यहां आप अपनी करेक्टर बिल्डिंग की दुआ कर सकते हैं रात को, कहला मेरी बुराइयां दूर कर, मैं थक गई अपनी इस फुलां आदत से, आप मेरी दूर कीजिए, या फिजिकल बुराइयां भी हैं इंसान के अंदर, शॉर्ट कमिंग्स हैं, बात अब हम सही बोलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, एक ऑब्सेशन होता है हमें किसी एक चीज़ का, अल्लाह कहते हैं नो प्रॉब्लम, मेरे रास्ते में लगे हो ना, मैं तुम्हारी बुराइयां दूर कर दूंगा। वाला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और लाजिमन दाखिल करूंगा इनको इन बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं, सवाब मिन इंदिल्ला, ये बदला होगा अल्लाह के पास से, वल्लाहु इंदहु हुस्नु सवाब, और बेहतरीन बदला तो अल्लाह ही के पास है। ये छह आयतें हकीकत में एक बंदे का अल्लाह से ताल्लुक जोड़ी, खुलासा करके, क्योंकि अब अगली आखिरी पांच आयतें ना इसको भी आपको फिर बाद में बताती हूँ, लेकिन यहाँ देखिए कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है, रात दिन का फर्क नहीं देखना, जो चीज़ कायनात पे अच्छी लगी उसको देखें, अल्लाह से बातें शुरू कर दें, कोई आपकी कदर करे तो भी, ना करे तो भी, कुछ भी कर दें, कैसे है जो भी है कर दीजिए, अल्लाह ज़ाया नहीं करता। और दूसरी बात देखिए कि अल्लाह मर्द औरत की कुर्बानियों में फ़र्क नहीं रखता, औरतों को भी अल्लाह अजर देगा, मर्दों को भी देगा। एक इतना वहशियाना किस्म का मजमून मैंने पढ़ा, वहशियाना मैं इसलिए कहूंगी कि दरिंदगी इससे बढ़ के नहीं कोई हो सकती, जो उस बड़े नरमो नाजुक से मजमून में थी, बेसिकली किसी ने जन्नत के ऊपर तनकीद की हुई है, नाउज़ुबिल्ला। मैं कहती हूँ कि मेरे मुंह में करेले से भी ज्यादा कड़वापन आ जाए अगर मैं उसका तसव्वुर करती हूँ जो मैंने पढ़ी पूरी, किसी ने लिखी हुई थी और किसी अल्लाह की बंदी ने उसको पढ़ दी, और मुझे लग रहा है वो किसी मीडिया पे पड़ी हुई है, जो वीडियो उसका स्टाइल बोलने का ऐसा जरा प्रोफेशनल सा, कि ये जन्नत क्या कहते हैं, इसमें तो सिर्फ सेक्स ही सेक्स है, इतनी गंदी बातें लिखी हुई। यानी वो कहते हैं ये जन्नत भी देखो मर्दों की जन्नत है, वहां तो बस ये है और ये तो बस एक, मतलब औसुबिल्ला पढ़ने को दिल कर, डिस्गस्टिंग, मर्दों को बेकार बना रहे हैं और औरत प्रस्त बना रहे हैं, जहां जन्नत में इनका रब बात करता है, और मुसलमान की बात है, कोई काफिरों की नहीं, काफिर तो मानते ही नहीं जन्नत को, ये मुसलमान कह रहे हैं कि ये जन्नत क्या है भाई, कि वहां हूरे हैं और बस मर्द अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, ये है तुम्हारी जन्नत, तो अल्लाह ऐसों को दे, क्यों ऐसे लोगों को तंग करे अल्लाह तआला। तो ये इंसान का छोटा मुंह बड़ी बात होती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं अमल जाया नहीं करूंगा, और यहाँ अपने लिए लिखिए जो करना है अल्लाह के लिए कीजिए, और अल्लाह से कि अल्लाह मुझे अपने लिए करा ले, मुझे जाया ना करना, ना मेरे अमलों को जाया करना, अगले दिन फिर करने को दिल करेगा। कोई आपको अच्छा के बुरा करे, आपने कहना मैंने किया अल्लाह के लिए था, मैंने करना है, मैंने करते ही रहना है, मैंने आखिरी दम तक करने की नीयत की है, मैंने करते रहना है, बस फिर इंसान के पांव जमते हैं, फिर गुनाहों से माफी मांगता है। वरना याद रखिए इन रातों की जो इबादत है ना, ये इंसान के कुछ गुनाहों की वजह से है, चूंकि बात बार बार तहज्जुद की और रात की हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी कोटेशन सुना देती हूँ पढ़ के, मैं तो असल में अपने आपको सुना रही हूँ कि कहीं मेरा मामला इस तरह का तो नहीं हो रहा। तहज्जुद से महरूमी, ये जो रातों को अल्लाह से बातें करने की तौफीक मिलती है, ये किसको नहीं मिलती, सुनिएगा। उलमा ने लिखा कि तहज्जुद की तौफीक हर एक को नसीब नहीं होती, बल्कि इसी शख्स को ये सादत मुयस्सर आती है जो महरूमी के असबाब से अपने आप को बचा कर रखता है। वो असबाब चार हैं, चार सबब हैं कि हम रात को क्यों नहीं जाग पाते। नंबर एक, रात में ज्यादा खाना, जब ज्यादा खाना खाया जाए तो नींद ज्यादा आएंगी, बदन सुस्त रहेगा, जिसकी वजह से तहज्जुद में उठना सख्त दुश्वार होगा, इसलिए रात में मैदे को हल्का रखने का एहतमाम किया जाए। दूसरी वजह, दिन में ज्यादा मुशक्कत वाले काम करना, अमूमन ज्यादा मशक्कत वाले काम से बदन थक जाता है और सोकर उठना मुश्किल होता है। तीसरी चीज, दिन में आराम यानी कैलूला ना करना, अगर दिन में कुछ आराम ना किया जाए तो आखिरी शब में उठना आसान नहीं होता, इसलिए वक्त निकालकर दिन में कैलूला कीजिए। ये तो आपको सबको पता थी, लेकिन चौथी चीज जो मुझे अपने लिए बड़ी फिक्रमंद लगती है, और वो क्या, गुनाहों का इर्तकाब। तहज्जुद से महरूमी का एक सबब गुनाहों में मुबतला होना है, गुना की नहुसत से आदमी इबादत की लज्जत से महरूम कर दिया जाता है, और इसकी तबीयत पर नहुसत छा जाती है, जिसकी बिना पर शब खेजी की तौफीक से महरूम रहता है। एक शख्स हसन बसरी से सवाल करता है कि मैं खाली जहन होकर रात में सोता हूं, और मेरा इरादा रात में उठकर इबादत करने का होता है, और मैं वजू का पानी भी तैयार करके रखता हूं मगर उठ नहीं पाता, इसकी क्या वजह है? पहले तो हम सोचें, क्या हम इतना भी इहतमाम करके सोते हैं जो बेचारा ये करके सोता है? अब वजह सुनिए, कहने लगे जुनूबु का कैद तक, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें कैद रखा है, यानी तुम्हारे गुनाह तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील में रुकावट बन गए हैं। सुफयान सॉरी कहते हैं कि मैं एक गुनाह की वजह से 15 महीने तक तहज्जुद की नेमत से महरूम रहा। 15 महीने कितने होते हैं जरा सा सोच के बताएंगे, कितना? 1 साल, 3 महीने, 1.25 साल। अब आप जरा सोचिए, जरा ये क्या होगा भला गुनाह? आप भी सोचें फिर बताती हूँ, चंद सेकंड गौर व फिक्र करके देखें कि ये क्या गुनाह है कि जिसने 1.25 साल तक तहज्जुद पढ़ने से रोके रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने पूछा कि वो कौन सा गुनाह था, कोई गुनाह होगा ना जिसकी वजह से ये सब हुआ था। तो उनका जवाब सुन लीजिए आप। देखिए, हमें भी अपने गुनाहों से डरना है, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं और आप अपने आप को बहुत दूसरों से अलग समझते हैं। हम सोचते नहीं, हमारे साथ जो होगा ना वो होगा, बस बाकियों की तो बातें हैं, हमारी नहीं है, मेरी नहीं है। लोगों ने पूछा वो गुनाह क्या था, तो आपने फरमाया कि एक आदमी को रोता देखकर मैंने दिल में सोचा था कि ये रियाकारी से रो रहा है। बात समझ गए? ये वजह थी कि जिसकी वजह से फिर अल्लाह ने मुझे रोने की तौफीक ही नहीं दी। हम कितने जालिम हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ ये फुलां फुलां ऐसा अच्छे भले बंदे के दीन की तरफ आते आते कदम हम रोक देते हैं। भला क्यों? कि अब हमने जो कह दिया कि ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि अपने आप की फिक्र करें, हर लम्हे अपने ऊपर सोचें कि मेरा आज का दिन मेरे कल से कैसे बेहतर हो सकता था, मैंने क्या किया। क्योंकि ये तहज्जुदों में अल्लाह हर बंदे को नहीं खड़ा करता, अल्लाह ताला मेरे आपके लिए इसको आसान कर दे। बातें बहुत कहनी आसान होती हैं, करनी मुश्किल है, निभानी मुश्किल है।
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
اب اگلی آیتیں جس طرح سے سورت پوری ہوگی اس کو سمجھ لیجئے پانچ آیتیں ہمارے سامنے اور ان کی حیثیت آپ کہہ لیجئے خاتمہ کلام کی ہے आप जानते हैं कि सूरत महले किताब का आमतौर पर भी जिक्र हुआ है और यहूद और नसारा का अलग अलग भी जिक्र हुआ है। फिर इसमें अहले ईमान का भी जिक्र आया, यानी इस एक सूरत में तीनों का जिक्र आया और साथ ही साथ मुशरिकीन का तस्कर आया, खास तौर पे गजवे हमरुल असद और गजवे उहद के नाते से उनकी भी बात थी ना। तो अब यहाँ उन सारे ग्रोहों के जिनकी बातें या जिनकी दुनिया में हम बहुत ज्यादा तरक्की देखते हैं ना, तो गुमान करने लगते हैं कि अच्छा अगर अल्लाह इनसे खुश नहीं है तो फिर इनको दुनिया क्यों दी है। उसका जवाब है आयत 196 में, ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलाद। ऐ नबी, आपको धोखे में ना डालें इन काफिरों का चलना फिरना शहरों के अंदर। इनकी भाग दौड़, इनकी तारीफें, इनकी बड़ी इमारतें, इनके जहाज, इनकी सफाई, इनकी प्लानिंग, इनका बड़ा बड़े प्लान्स बनाना, इनकी दुनियावी खुशहाली आपको धोखे में ना डाले, क्योंकि आयत 197 मताउन कलील, थोड़ा सा फायदा, ये तो थोड़ा सा फायदा। सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है। वबी सलमी हाथ, ये बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ सबको पीछे कर दिया। जब हम दुनिया में गैर मुस्लिमों को तरक्की करता देखते हैं ना, तो हम कहते हैं उनकी तरक्की की वजह इस्लाम को छोड़ना है। कपड़े कम पहनते हैं ना, इसलिए तरक्की करते हैं। टांगे इनकी औरतों की खुली होती है ना, इसलिए ये बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं। नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको ये 4 दिन की चीजें मिली हैं। असल में अब अल्लाह ताला ने आगे इनको जो देना है वो देना है, वो आगे का मामला होगा। इसके बरक्स आयत 198, लाकिनिल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम, इसके बरक्स जिन लोगों ने अपने रब का तकवा इख्तियार किया। याद रखिए, मुसलमान हमेशा कमजोर होंगे दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट अबाउट दैट। तकलीफें भी आएंगी, अभी आपको चंद वाक्यात सुनाऊंगी अगर मौका मिला, कि ये लाजिम है। मुसलमान है ना, मान लीजिए मुश्किलों में होंगे, तकलीफें होंगी, बातें सुननी पड़ेंगी। सच्चे दीन में है कि बस बाजारी दीन में? सच्चा दीन है, आपकी जिंदगी पे मुश्किलें होंगी, तनकीदें होंगी, पाबंदियां लगेंगी, ये फितरत है, नबियों की सुन्नत चलती आ रही है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे लोग जिनको दुनिया में आउटकास्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड लोग थे, उनको मैं क्या करूंगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनके लिए बागात है जिनके दामन में नदियां बहती होंगी और वो हमेशा रहने वाले उसमें। खालिदीन फीहा, इस लफ्ज खालिद पे गौर करें। दिल चाहता है दुनिया से जाने को, हालांकि कितने इसमें सदमे, दुख, तकलीफें, बीमारियां। तो वो जन्नत का क्या हाल होगा जहां इतना कुछ होगा। और नुजुलम मिन इंदिल्ला, ये इनके लिए इब्तदाई मेहमान नवाजी होगी अल्लाह की। नुजुल याद है, पहला खाना। नजील कहते हैं मेहमान जो अभी अभी आके घर बैठा है, ये तो अभी सिर्फ तारुफ है, आगे आगे जाके पता नहीं क्या मिलना है। वमा इंदल्लाह खैरुल अबरार, मजीद जो अल्लाह के पास है वो तो बेहतरीन है नेकुकारों के लिए। यानी जन्नत की असल नेमतें तो बयान में आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है बेसिकली, قال الله تبارك وتعالى اعددت لعبادي الصالحين, मैंने तैयार किया अपने नेक बंदों के लिए, ما لا عين رأت, जो आंखों ने देखा नहीं, ولا أذن سمعت, जो कानों ने सुना नहीं, और ولا خطر على قلب بشر, किसी बशर पर तो उसका ख्याल भी नहीं गुजरा। क्या उस जन्नत को पाने के लिए कोशिश नहीं करनी? क्या होगा अगर दुनिया में थोड़ी सी कुर्बानियां देनी पड़े, थोड़ी सी ख्वाहिशों की कुर्बानी है ना। देखिए, हम यहाँ ना बैठे होते तो कहाँ होते, किसी बाजार में होते तो क्या हमें कोई उन्होंने मुफ्त में चीजें पकड़ा देनी थी, किसी फिल्म में होते तो फिल्म से देख कर क्या आते, सो रहे होते तो ज्यादा सो के तो और कमर दुख रही होती इस वक्त, सर और भारी हो रहा होता। अल्लाह ने हमें अनदेखी जन्नत के लिए जमा कर लिया तो क्या अल्लाह जाया करेगा। सेकेंड लास्ट आयत, वइन्न मिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाह, और बेशक अहले किताब में वो भी हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पे। वमा उन्ज़िला इलैकुम वमा उन्ज़िला इलैहिम, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो तुम पर नाजिल किया और उस पर भी जो तुम पर नाजिल किया गया। सूरह बकरा का एंड याद करें, वहां क्या था, ला नुफर्रिकु बैना अहद मिन, खुले दिल वाले बनो, उनके अंदर अच्छे लोग हैं, उनकी खूबियों का तज़किरा, और खाशीन लिल्लाह, वो अल्लाह से डरते हुए हैं। ला यश्तरून बि आयतिल्लाहि समनन कलीला, वो अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत पर फरोख्त नहीं करते। यानी खूबी है तो उसका जिक्र करो, दुश्मन की खूबी है उसका भी जिक्र करो। उलाइक लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ऐसे लोगों का अजर इनके रब के पास महफूज है। ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب چکانے والا ہے، اس کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. کیا پتہ چلا کہ جو جو کرے گا اس کو ملے گا. غیر مسلم بھی اچھے کام کر رہا ہے، ایمان لے آئے گا، اللہ اس کے بھی عمل قبول کر لے گا. اور آخری آیت جو آپ کہہ لیں پوری سورت میں سے، جو میں نے آپ کو پہلے دن موضوع بتایا تھا، امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل، یہ آیت اسی کی طرح سے ایک بہت جامع آیت ہے. چار باتوں کا امت کو حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اہل ایمان صبر کرو، اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بھڑ جاؤ، اور مربوط رہو، رابطے میں رہو، منظم رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو. چار چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ آمنو، ایمان. تو ایمان تو سب کو سمجھ آتا ہے، مزید بھی آئے گا. اس بھی رکے ذاتی صبر، آپ کی مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، اس پہ صبر کیجئے. دکھ آ گیا صبر کرے، کوئی مر گیا اس پہ صبر کر لیجئے، کوئی سامان چوری ہو گیا صبر کر لیجئے، حادثہ ہو گیا صبر کر لیجئے. یہ صبر ہے، عام صبر. مصابرہ کیا ہے جو دوسرا ہے، یہ بہت اہم ہے. دوسروں کے مقابلے میں صبر، دشمن سے مقابلے میں صبر. ثابت قدمی کا معنی اصل میں کہ جب تمہارے قدم کمزور ہونے لگے تو ثابت قدم ہو جاؤ. ایک صبر تم کر رہے ہو اپنے ذات کے ساتھ، اب دوسرا صبر اجتماعی کر لو. آپ کہہ لیں کہ اس بیرو ذاتی صبر، سا بیرو اجتماعی صبر. بینگ اے نیشن صبر کرو، خواہشوں پہ قابو پاؤ، دشمنوں کی باتوں کے اوپر صبر کرو، دل غمگین نہ کرو. اور ادھر بھی بتایا جا رہا ہے کہ 70 مارے گئے، ایک سال پہلے تم نے ان کے مارے تھے، آج تمہارے ہو گئے، غم نہ کرو. وقت کے ساتھ ساتھ قربانیاں دیتے جاؤ گے، اللہ قبول کرے گا. اور رابطوں کیا، مرابط عربی زبان میں پہرے دار کو کہتے ہیں، پہرا. مرابط، ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے آپس میں جڑے رہنا. غزوہ احد کی شکست کو ذہن میں لے آئیے، ذرا سا ڈھیلا پن آیا، سسٹم بگڑا، سماو اطاعت میں کمی ہوئی، شکست ہو گئی. یہاں صبر اور مصابرت کے ساتھ رابطوں کر کے بتایا کہ آپس میں جڑ جاؤ اور رابطے رکھو. یہاں آپ کو مجھے بھی کہا جا رہا ہے، آپ اور میں بھی اصل میں سچی بتائیں، اگر آپ مانے نہ مانے، جس دن آپ مان جائیں گے اس دن آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے. اب آپ کا بھی ایک اپنا ہی نیا رنگ ڈھنگ بنے گا جینے کا. قرآن پڑھنے، سمجھ کر، شعور کر، اور اس سے پہلے کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے. سب سے بڑی چینج جو قرآن کی طرف آنے کے بعد آتی ہے نا، میں نے آج سے شاید 20 سال پہلے کسی ایک دیندار تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا ایک لیکچر سنا تھا، اس میں یہ جملہ بولا تھا انہوں نے، آج تک میرے دل دماغ پہ لکھا. میں نے 20 بار بولا ہوگا اس کے بعد، کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن پہ آنے کے بعد دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے، تمہارے دوست تمہارے دشمن بن دے جائیں گے. اور جن کو کل تک تم دشمن سمجھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، آج سے ایسے تمہاری ان سے دوستیاں ہوں گی. کہتے تھے اگر کسی کی زندگی میں یہ دو تبدیلیاں نہیں آ رہی نا، تو سچا دین نہیں آ رہا. نبی کے ساتھ دیکھ لیجیے، دوست دشمن بنے، صادق اور امین کہنے والے کاہن مجنوں کہہ رہے ہیں. اور جو کچھ بھی نہیں، جن کو انسان اہمیت نہیں دیتا، نیکی کے نام پہ جڑنے لگ گئے، بلال آ گئے، ابو ہریرہ آ گئے. تو یہ دوستیاں دشمنیاں بدلتی ہیں. اب آپ کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہوگا، یہ رابطے کے آپس میں لائک مائنڈیڈ لوگ بیٹھو. آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں بچوں کی سالگرہ نہ کریں، مثال دیتی ہوں، آپ کی باقی ساری دوستیں کرتی ہیں، اب آپ کے بچے ان کے بچوں کے دوست ہیں، وہ کہیں گے ان کی ہوتی ہے ہماری نہیں ہوتی. تو آپ اپنے بچوں کو اپنے بچوں سے ملائیے، وہ بھی کہے گا میری امی میری سالگرہ نہیں کرتی، وہ کہے گا میری بھی نہیں کرتی، میری امی بھی سکارف لیتی ہے، میری بھی لیتی ہے، میری پردہ کرتی ہیں، اس کی بھی کرتی. اس بیرو سا بیرو رابطو، کل ہی نہیں بچوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے. ہسبینڈس کی اپنی دوستیاں کرائیں، آپس کی گیٹ ٹوگیدر بہت رکھیں. اب یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، کلوز سرکٹ میں ایک دوسرے سے ملا کریں. ہلکا ہے باپ آپ کے ہسبینڈ آپ کی دوستوں کے ہسبینڈ سے ملے، آپ لوگ اپنی بچے آپ کے بچے، یعنی اس طرح کا ایک چھوٹا سا ایک سیلولر قسم کا سسٹم بن جاتا ہے کہ جس میں پھر لائک مائنڈیڈ لوگ جمع ہوتے جائیں گے. آپ کہتے ہیں بچوں کی سالگرہ نہیں کرنی، آپ ایسے ہی ایک موقع پہ اپنے بچوں کو کہیں چلو بھی تمہارے سارے دوستوں کی دعوت ہے، چھٹیوں میں آپ بلا لیں، کبھی بیٹیوں کی سہیلیوں کو بلا لیں، بچوں کو بلا لیں، کبھی آپ کے ہسبینڈ اپنے دوستوں کو بلا لیں، کبھی آپ اپنی فرینڈس کو بلائیں. یہ آلٹرنیٹ دینے چاہیے حد میں رہتے ہوئے. اب یہ نہیں کہ آپ 10 کھانے پکائیں، سمپل دال چاول پکا کر ایک دو چیز بنا کر بلائیے، چلے بھائی آج آپ میرے گھر آ جائیں. اس سے کیا ہوگا، رابطے ہوں گے. آپ کے ہسبینڈس کا ملنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے سے. وہ آپ کو ایک کام پہ جڑنے نہیں دیں گے کیونکہ اب آپ کی ایک نئی سوچ بن رہی. ابھی پچھلی دوستیں تو آپ سے ضرور کٹیں گی, اب تم تو سخت ہو گئی, تم تو بدل گئی ہو, تم وہ ہو گئی ہو, تو وہ ان کا غم نہ منائیں. آپ اپنے نئے دوستیاں کریں, تھوڑے دن میں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کہتے ہیں میں نے ساری دوستیاں چھوڑ دی ہیں, ماشاءاللہ آپ میں سے کئی تو طلاق دے چکے ہیں نا اپنی دوستوں کو, 3 طلاق کے پکی, آج کے بعد میرا تمہارا دوستی نہیں کیونکہ میں نے کورس شروع کر لیا. انہوں نے دی تو اپنے قبول کر لی, ایسا نہیں کرنا. آپ محبت پیار سے مروت کے ساتھ سب سے رہیں, لیکن لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ کلوز سرکٹ ہوتا ہے, دکھ سکھ ایک جیسے ہوتے ہیں. آپ اس میں بھی نہیں گفتیں کریں, اب یہ نہیں کہ آپ یہاں کلاس ہو رہی ہے باہر بیٹھ کے آپ ادھر دوسرے کی گفتیں کریں اور کہیں جی کہ ہم دکھ سکھ کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب سا خوبصورت تعلق بنتا ہے, اور اس میں جو پھر مزہ آئے گا سچائی ہوگی, نہ اس میں تکلفات ہوں گے, نہ باتیں ہوں گی, نہ لیگ پولنگ ہوگی. میں نے بیسٹ فرینڈس کے آپس میں تقابل دیکھے, لڑائیاں, جھگڑے, حسد, بغض, تم نے بلایا اتنے آئے, میں نے بلایا اتنے آئے, میں نے یہ جوڑا پہنا, تم نے یہ دعوت میں پکا لیا, میں نے تو یہ پکانا تھا. بتاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, جھوٹ موٹ کر کے دس کھانے کھلا کے, اور اصل میں اندر بھی ہوتا ہے کہ یحمد بما لم یفعل, ان باتوں پہ تعریف کرو جو ہم کرتے نہیں. اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم فلاح پاتے ہو. آج اگر امت مسلمہ یہ 4 کام کر لے تو میدان ہمارے ہاتھ میں ہے. پیچھے سے بات چل رہی تھی, اللہ کے راستے کی قربانیاں دینی پڑیں گی, پھر بات ہوگی, اس کے بغیر بات نہیں بنتی. آج اس دور میں اگر میں آپ اپنے آپ کو لیں, ہم قربانیوں کے دور میں آئے ہوئے ہیں. شکر کیجیے اللہ کا کہ اللہ تو ہم سے کچھ قبول کرے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا, اور ادھر کا دار اس بیرو صاحب بیرو راب بتو واتقوا اللہ, کرنا پڑے گا. آپ کی میری زندگی آرام سے بیٹھنے والی ہے ہی نہیں, پتہ نہیں ہمارے پاس کیا دینا ہے, کتنی زندگی ہے ہمارے پاس, ہم نہیں جانتے. ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, مصبن عمیر کو دیکھیے, اتنے امیر شہزادے تھے اور جب فوت ہوئے تو کفن نہیں ہے, پورا دھاری دار کپڑا نہیں ہے, چادر تھوڑی ہے, سر ڈھانپتے ہیں, پاؤں چھپتے ہیں, کھلتے ہیں پاؤں, ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, ایزا آتی ہے, تکلیفیں آتی ہیں, لوگ آپ کو عجیب باتیں کہیں گے, سنیں گے, یہ کچھ ہوگا. اتنا زیادہ مسلمان ستائے گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا اور ستایا گیا, کسی کو میری طرح نہیں ڈرایا گیا. مجھ پر مسلسل 30 دن ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے ایسی کوئی خوراک گھر میں نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے, سوائے اتنی سی چیز جو کہ بلال نے اپنی بغل میں چھپائی بھی تھی. یہ ترمذی کی روایت ہے. یہ ساری وہ مکی دور کے سمجھیں کہ اس ٹارچر والے دور کی باتیں ہیں. اسی طرح حباب بن عرت حضرت عمر کے پاس آئے, سنیے گا ذرا, اتنا یعنی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کو پڑھ کے. حضرت عمر کے پاس آئے تو کہا کہ خباب میرے قریب بیٹھو, اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے تم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں سوائے عمار بن جاسر کے, کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی تھی نا. خیر, خباب نے اپنی پیٹ کے وہ نشان دکھائے جو مشرقین مکہ کے تشدد اور تعذیب کا نتیجہ تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے, بچے ان کے زخموں میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھیلا کرتے تھے. ایک غزوے میں اللہ کے نبی کی انگلی خون آلود ہو گئی, فرمائے تو کیا ہے, صرف انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی, جو زخم تجھے اللہ کی راہ میں ہوا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح حضرت عمر نے مجھے اور اپنی بہن فاطمہ کو اسلام لانے کی وجہ سے رسیوں سے باندھا جبکہ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے. یہ سعید بن زید ہیں, کون, اشرہ مبشرہ, حضرت عمر کے بہن ہوئی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو میں نے آپ نے تو ٹھنڈی ٹھنڈی جنت لی ہوئی ہے, نہ قاتلو نہ وقوتلو نہ کچھ نہ کچھ, تو دعا کیجئے کہ اللہ اس بروا صاحب بروا را بروا لے آئے. یہی سورت کا پیغام ہے, یہی پورے قرآن کا پیغام ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہی چیزیں آپ کے میرے کام آنی ہیں. باقی آسانیاں تو لے کے دنیا سے کب تک جی کوئی رہا اور کب تک جائے گا, متاون قلیل, 4 دن کا فائدہ ہے. لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے چل پڑتے ہیں. بخاری اور مسلم آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے, فوراً عمر کو دیکھ کے اٹھ گئے تو آپ کے یہ پہلو پہ چٹائی کے نشان پڑ گئے, یعنی اندر گھسی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رونے لگ گئے, کہا کیا ہوا, کیوں رو رہے؟ کہا اللہ کے نبی کیسرو کسرا کے بادشاہ ہیں, وہ تو اتنی موجیں کریں اور آپ ایسے. تو آپ نے کہا عمر, کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو ہمیں تو اللہ نے دنیا بھی اتنی پیاری دی ہے, کیا کھوتا ہے اللہ, کیا لیتا ہے میرے آپ سے؟ تو ہمیشہ اپنے دل سے یہ دعا کریں. آج ہم نے اللہ کے حکم سے دوسری بڑی سورت پوری کی. اللہ آپ کو مبارک کرے اور آخری دم تک اس سفر کا حصہ رکھے, کیونکہ وہ جنت جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے اس کی قیمت استقامت ہے.
जो आज मैं कहती हूँ हमारे रिश्तेदारों से अगर हमारे रिलेशन अच्छे हुए हैं ना, वो आखिरी जो आयात है ना, यकीन करें वो मेरे जहन में हर वक्त घूम, राबितु
अल्हम्दुलिल्लाह,
राबितु, राबते में रहो,
छोड़ना नहीं है।
और सिर्फ किस लिए, अल्लाह को बीच में करके, कि अल्लाह की खातिर
लेकिन
बात
अगर
करो।
डॉक्टर सारे पीछे हो जाए कि ये बीमार है, हमने इनको नहीं बात करनी, तो कौन ठीक करेगा? दीन की समझ रखने वालों को अनजान लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत फाते आलम, जुबान शीरी मुल्क गिरी। लेकिन ये कि फतवे ना दे, तनकीद दूसरा ना करें, जो बेतुकी बातें अगले के करनी शुरू होते ना, वो नहीं करें, हिकमत मांगे बस। ये भी मैं देखती हूँ अल्लाह ही मुंह पे डालता है बात। जुबान से काम बोले लेकिन अपना अमल रखे, उनको खिलाएं पिलाएं, तोहफे दें, तहादु तहाबु, तोहफे दे दे कर लोगों के दिल अल्लाह की तरफ करे, जम जाते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ने इंसान के नफ्स में बहुत सारी वीक पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो उसमें से इंशाल्लाह निकलेंगे। फिर ये जो लफ्ज़ है ना मुसाबिरा और राबिता, इसमें बहुत प्यारे अमल हैं और भी कुछ है। इस फिरू में तो आपने समझ गए, फ़राइज़ पर सब्र है, अल्लाह के हक में सब्र है, अल्लाह की इताअत पे सब्र करना, शहवतों को तर्क करने में नफ्स को साबित कदम रखना। साबरे में क्या कुछ आता है लिखिएगा। नंबर एक, ख्वाहिशात पे सब्र, लालच और हिरस पे सब्र, आरजुओं पर सब्र, रगबतों पर सब्र, अपनी कमजोरी और नक्स पर सब्र, अफसुर्दगी पर सब्र, लोगों की ख्वाहिशों पे सब्र, लोगों की कमजोरी पे सब्र, लोगों की जहालत और बुरी सोच पे सब्र। अब ये पहले सब्र हम करेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे ना। लोगों के मिजाज बदलने पे सब्र, नफ्स की जल्दबाजी पे सब्र, लोगों के मगरूर होने पे सब्र, लोगों की चालबाजियों पे सब्र, कुफर की गंदगी पर सब्र, बुराई के फलने फूलने पर सब्र, असबाब की कमी पे सब्र, मददगारों की कमी पे सब्र। कितने मौके आते हैं मेरे आपके पास सब्र के? कोई आया नहीं तो हमें सब्र करना है, उसके बारे में दुआ करनी है, कलमे खैर बोलना है। वसवसों पे सब्र, गम और थकन पे सब्र, दिल की तंगी और घुटन पे सब्र। इज्तमाही जिंदगी का सब्र बहुत मुश्किल है, ये तो अल्लाह ही दे तो फिर ही आता है। फिर इसी तरह राबितु का जो लफ्ज है ना, इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, सुन लीजिए, सही मुस्लिम की। नागवारी के हालात में मुकम्मल वजू करने, मस्जिदों में ज्यादा दूर से चलकर जाने और नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने को भी रिबात कहा गया। रिबात यानी ये नेकियों को बढ़ाता, गुनाहों को माफ कर देता। गज़वे उहद में भी तो मोर्चे ही छोड़े थे ना, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह अनफाल 60 में, वमिर रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम, कि तुम कुव्वत और तैयार बंधे हुए घोड़े मुहैया रखो, तुम इससे अल्लाह और अपने दुश्मनों और उन दुश्मनों को खौफजदा करते हो। तो जहां से दुश्मन के आने का खतरा हो उधर से रोक लेना अपने आप को, और वैसे भी इस्लामी सरहदों का पहरा देना भी इसमें आता है। मुराबित का अजर सुन लीजिए, हदीस से बहुत ही खूबसूरत है। इस पे आपने हर उम्मत के अमल को खत्म कर दिया जाता है सिवाय इसके जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए फौत हुआ, इसका अमल कयामत तक बढ़ता रहता है और वो कब्र के फितने से भी महफूज रहता है। यानी मुराबित जो है ना रब्त वाला, उससे कब्र का इजाब नहीं होता उस पर, ये मुराद है इसे। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक दिन और एक रात का पहरा देना एक महीने के रोजे और क्याम से बेहतर है, और अगर इस हालत में मुजाहिद फौत हो गया तो इसका अमल जारी रहेगा जो वो करता था, और इसका रिस्क भी जारी रहेगा, और वो आजमाइश से भी महफूज रहेगा। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, आपने फरमाया, दिरहमों दीनार और चादर का बंदा हलाक हो जाए, अगर इसे दिया जाए तो खुश, ना दिया जाए तो ना खुश। ऐसा शख्स हलाक हो जाए और सर निगूं हो जाए, अगर इसको कांटा चुभ जाए तो कोई ना निकाले। खुशखबरी हो इस बंदे को जो अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए अपने घोड़े की लगाम हर वक्त हाथ में रखे, इसका सर गुबार आलूद हो, इसके पांव गुबार आलूद यानी मट्टी लगी हो, और इसे कहा जाए कि पहरा दो तो वो पहरा दे, अगर लश्कर के पीछे हिफाजत के लिए मुकर्रर हो तो पीछे रहे, यानी जो कहा जाए वही करे। अगर वो किसी से इजाजत मांगे तो इजाजत ना मिले, सिफारिश करे तो सिफारिश ना मानी जाए। यानी इतना दुनिया में कमजोर है लेकिन अल्लाह क्या उसका कितना अजर है। आपने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, कैसे अमल ना बताऊं जिससे अल्लाह गुनाहों को मिटाए और दर्जे बुलंद करे। हम भी चाहेंगे ना کیا ہے وہ؟ تو صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا, گرانی کہتے تھکن کو, تھکن اور ناگواری کے باوجود مکمل طریقے سے وضو کرنا, یعنی کامل وضو. سردی ہے تو اچھا وضو کر رہے ہیں, میک اپ کیا ہوا تو وضو اچھا کرنا پڑے گا ورنہ تو پانی نہیں پہنچے گا. اسی طرح مسجدوں کی طرف چل کے جانا, زیادہ قدم چلنا, دور سے آنا, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کیا ہے؟ ذالک رباط, ذالکم رباط. فرمایا یہ رباط ہے, یہ رباط ہے, مسلم کی روایت ہے. یعنی صرف جنگوں میں سرحدوں پہ لڑنے والی بات نہیں ہے, بلکہ نمازوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی کمی بیشی دور کرے. حق صورت کا دانی ہوا, لیکن ہم نے اپنی توفیق سے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد, متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله, وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا, أولئك لهم أجرهم عند ربهم, إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.